नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। निर्वाचन आयोग आज राजस्थान में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। चक्रवाती तूफान गज आज सवेरे नागपत्तनम और वेदरण्यम के बीच तमिलनाडु तट को पार कर गया, इसके असर से तेज हवाएं और बारिश। सरकार ने स्थानीय निकायों को भवन, शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल के निर्माण के लिए पर्यावरण से संबंधित मंजूरी देने के अधिकार दिए। श्रीलंका की संसद में महिंदा राजपक्ष के नेतृत्व वाली नई सरकार के विरुद्ध नए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। पंकज अडवाणी ने लगातार तीसरा बिलियर्ड्स खिताब जीता, उनके विश्व खिताबों की संख्या 20 हुई। और भारत आयरलैंड को हराकर आईसीसी महिला 2020 विश्व क्रिकेट के सेमीफाइनल में। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। निर्वाचन आयोग का दल राजस्थान के दो दिन के दौरे पर आज उदयपुर पहुंचेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत तथा निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा राज्य में विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने आकाशवाणी को बताया,
कमीशन आज उदयपुर में उदयपुर और जोधपुर डिवीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स और एसपी और आईजी डीआईजी के साथ समीक्षा करेगा ताकि उनकी पूरी प्रिपेयरनेस है कि नहीं उसकी जानकारी हो जाए। और फिर उसके बाद शाम को जयपुर पहुंचेंगे आज ही, वहां पॉलिटिकल पार्टीज के कंसर्न जानेंगे, उनकी चिंताएं जानेंगे, वहां सिविल सोसाइटी और डिसेबिलिटीज के ऑर्गेनाइजेशन से उनसे भी चर्चा होगी। कमीशन पूरा संतोष करना चाहेगी कि 7 दिसंबर को होने वाली पोलिंग के लिए राजस्थान पूरी तरह तैयार है।
अब तक भारतीय जनता पार्टी के 29 और कांग्रेस के 30 उम्मीदवारों सहित 262 उम्मीदवार नामांकन भर चुके हैं। 200 सदस्यों की राज्य विधानसभा के लिए 7 दिसंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए कुल 1101 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में 20 नवम्बर को 72 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंबिकापुर में चुनाव रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के राज बब्बर और नवजोत सिंह सिद्धू तथा बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती भी विभिन्न स्थानों पर रैलियों को संबोधित करेंगी। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल आज शाम चुनावी रैलियां करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि लगभग 17 निर्वाचन क्षेत्रों में मुकाबले पर सबकी नजरें रहेंगी।
इस चरण में जो जाने माने चेहरे अपना चुनावी भाग्य आजमा रहे हैं, उनमें विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल के साथ ही राज्य सरकार के 9 मंत्री भी शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष इस चरण में चुनाव मैदान में हैं। वहीं अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और पूर्व केंद्रीय मंत्री चरण दास महंत भी शामिल हैं। दूसरे चरण में सबसे अधिक 46 उम्मीदवार रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से, जबकि सबसे कम 6 प्रत्याशी बिंद्रा नवागढ़ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
मध्य प्रदेश में 230 सदस्यों की विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहडोल और ग्वालियर में चुनाव रैलियों को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान इस महीने की 28 तारीख को होगा।
महाकौशल और चंबल क्षेत्र में 2 जनसभाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से मध्य प्रदेश में अपने प्रचार अभियान का श्री गणेश करेंगे। प्रधानमंत्री पहले जनजातीय वर्चस्व वाले शहडोल जिले में और उसके बाद ग्वालियर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राज्य के 5 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री हर दिन 2 आम सभाओं में हिस्सा लेंगे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, संबित पात्रा, कमलनाथ और कई अन्य वरिष्ठ नेता भी आज जनसभाओं को संबोधित करेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
मिजोरम में विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख पास आने के साथ ही प्रचार जोर पकड़ने लगा है। 40 सदस्यों की विधानसभा के चुनाव के लिए इस महीने की 28 तारीख को मतदान होगा। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज चुनाव प्रचार के लिए मिजोरम पहुंच रहे हैं। 5 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती 11 दिसंबर को होगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। सूची को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति में नई दिल्ली में आज अंतिम रूप दिया गया। चक्रवाती तूफान गज आज सवेरे नागापत्तनम और वेदरण्यम के बीच तमिलनाडु तट को पार कर गया है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात को पूरी तरह गुजरने में कुछ और घंटे लगेंगे। नागापत्तनम जिले और आसपास के इलाकों में इसके असर से अब भी भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान कमजोर पड़कर कल तक पश्चिम तमिलनाडु और केरल होते हुए अरब सागर पहुंचेगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि नागापत्तनम जिले में 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। आसपास के जिले भी तेज हवा और बारिश की चपेट में हैं।
चक्रवाती तूफान के कारण नागापत्तनम और वेदरण्यम सहित कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि अत्यधिक प्रभावित इलाकों में 82,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। तमिलनाडु के 6 और पुदुचेरी के 2 जिलों के शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। तूफान के रास्ते में पड़े क्षेत्रों में रेल और बस सेवाएं प्रभावित हुई हैं। उखड़े हुए पेड़ों को हटाने जैसे राहत कार्य रात भर जारी रहे। चक्रवात से अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। चेन्नई से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं धर्मेंद्र।
उच्चतम न्यायालय आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक आलोक वर्मा की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ड्यूटी से हटाने और छुट्टी पर भेजने के आदेश को चुनौती दी गई है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पीठ आलोक वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट पर भी विचार कर सकती है। जनता दल यूनाइटेड ने बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। मंजू वर्मा को मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले में सीबीआई छापे के दौरान उनके निवास से विस्फोटक बरामद होने के बाद हथियार अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह ने कल बताया कि पार्टी ने अपराध और भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत मंजू वर्मा को 10 नवंबर को पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने मंजू वर्मा को गिरफ्तार न कर पाने के लिए बिहार पुलिस की आलोचना की है। ओडिशा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 30 दिन के सत्र में 23 कार्य दिवस होंगे। सत्र में विपक्ष द्वारा किसानों, शिक्षकों, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, जगन्नाथ मंदिर में अनियमितताओं के मुद्दे उठाए जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।
वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन।
सरकार ने स्थानीय निकायों को 20,000 से 50,000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र में भवन निर्माण तथा विकास परियोजनाओं में पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के अधिकार दे दिए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से जारी अधिसूचना में बताया गया कि स्थानीय निकायों को यह भी अधिकार दिया गया है कि औद्योगिक शेड, शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों और हॉस्टलों में पर्यावरण नियमों का पालन सुनिश्चित कराएं। अधिसूचना के अनुसार नगर निगम, विकास प्राधिकरण और जिला पंचायत जैसे स्थानीय निकाय भवन निर्माण या अन्य किसी संबंधित गतिविधि की अनुमति देने से पहले पर्यावरण संबंधी शर्तें निर्धारित करेंगे। इन शर्तों में जल निकासी और संरक्षण, वर्षा जल संचय, जल पुनर्प्रयोग, कचरा प्रबंधन, हरित क्षेत्र जैसे विषयों से जुड़े नियम शामिल हैं। डिजिटल इंडिया भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लोगों को अनेक सुविधाएं मिल रही हैं। इस योजना के तहत डिजिटल माध्यम से प्रमाण पत्र जारी करने और विभिन्न बकायों का भुगतान जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। पेश है हमारे त्रिची संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट।
तमिलनाडु में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम मुख्य रूप से छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित है। ऐसे कई स्थानों पर ई सेवा बूथ या इलेक्ट्रॉनिक सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं। ये केंद्र त्रिस्तरीय पंचायत संस्थानों के सहयोग से काम करते हैं तथा आम लोगों को बिना किसी परेशानी के त्वरित और भरोसेमंद सेवाएं सुनिश्चित करते हैं। मदुरई की रहने वाली श्रीमती कृष्णा वैनी का कहना है कि ई सेवा केंद्र उनके जैसे अनेक लोगों के लिए वरदान है जिन्होंने केवल स्कूल स्तर तक ही शिक्षा पाई है।
प्रमाण पत्रों के लिए या फिर बिलों का भुगतान करने के लिए विभिन्न कार्यालयों में अपनी बारी के इंतजार में लगने वाला समय और पैसा लगभग खत्म हो गया है। बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे जैसे आम लोग भी अब सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का लाभ उठा सकते हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी को आम आदमी के दरवाजे तक पहुंचाने वाली डिजिटल इंडिया योजना अब ग्रामीण स्तर पर आमूल परिवर्तन की कुंजी बन रही है। त्रिची से डॉक्टर के परमेश्वरन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टोल ऑपरेटर ट्रांसफर मॉडल के तहत राजमार्ग परियोजनाओं के पहले चरण के परिणामों से उत्साहित होकर मुंबई में दूसरे चरण की शुरुआत की। पहले चरण की 9 राजमार्ग परियोजनाओं से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 96 अरब रुपए से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है। श्री गडकरी ने कल कहा कि दूसरे चरण से और बेहतर प्रदर्शन की आशा है। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में 586 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों को सहयोग और सलाह मशवरा देने से संबंधित प्रमाण पत्र स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। पर्यटन सचिव रश्मि वर्मा ने कल नई दिल्ली में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। श्रीलंका में सांसद महिंदा राजपक्ष के नेतृत्व वाली नई सरकार के विरुद्ध नए सिरे से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। देश के राजनीतिक संकट को सुलझाने की दिशा में राष्ट्रपति और संसद अध्यक्ष के बीच इस बारे में सहमति हुई है। अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में 2 दिन तक चले हंगामे के बाद आज दोपहर फिर चर्चा होगी। श्रीलंका के राजनीतिक संकट की शुरुआत पिछले महीने हुई जब राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना ने श्री नारायण विक्रम सिंघे को हटाकर महिंदा राजपक्ष को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। राष्ट्रपति ने इसके बाद संसद का सत्रावसान कर दिया और फिर संसद भंग कर दी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने संसद भंग करने के निर्णय पर रोक लगा दी। भारत के पंकज आडवाणी ने कल 150 अप प्रारूप में लगातार तीसरी बार IBSF बिलियर्ड्स खिताब जीत लिया। इस जीत के साथ उनके विश्व खिताबों की संख्या 20 हो गई है। कल फाइनल मैच में आडवाणी ने म्यांमार के नाई शुआओ को हराया। भारत आयरलैंड को हराकर ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। गयाना में कल भारत ने आयरलैंड को 52 रन से हराया। लगातार तीसरी जीत के साथ भारत के 6 अंक हो गए हैं और वो ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से जनजातीय कला संस्कृति का आदि महोत्सव आरंभ हो रहा है। जनजातीय कार्य मंत्री ज्वाल ओराम ने बताया कि 23 राज्यों के 600 से अधिक कला शिल्पी 15 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि 14 नृत्य मंडलियां भी अपनी प्रस्तुति देंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
धन्यवाद लवलीन। आज सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कि दूसरे राज्य में आरक्षण की मांग नहीं कर सकते प्रमुखता से देते हुए अदालत का यह स्पष्टीकरण भी दिया है कि व्यक्ति का जन्म जिस राज्य में हुआ है सिर्फ वहीं वो आरक्षण का दावा कर सकता है। राष्ट्रीय सहारा ने सरकार के इस फैसले को प्रमुखता से दिया है कि नौकरी प्राइवेट सैलरी सरकारी। पत्र ने बताया है कि मातृत्व अवकाश से परेशान महिलाओं को सरकार का तोहफा, ऐसी महिलाओं को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 7 हफ्ते के वेतन का भुगतान सरकार करेगी, बाकी 19 हफ्तों के वेतन का जिम्मा कंपनी का होगा। इसी अखबार की खबर है कि प्राइवेट क्षेत्र में अब 5 की बजाय 3 साल पर ही ग्रेच्युटी। आसियान भारत शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए हम प्रतिबद्ध, जनसत्ता ने प्रमुखता से देते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी 5वीं बार पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। दैनिक जागरण ने दुनिया की अग्रणी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच के इस अनुमान को प्रमुखता से दिया है कि इस वित्त वर्ष में विकास दर 7.8% रहेगी। पत्र ने एजेंसी के हवाले से लिखा है कि चुनौतियों के बावजूद मध्यम अवधि का ग्रोथ आउटलुक मजबूत हुआ है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग आज राजस्थान में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। चक्रवाती तूफान गज आज सवेरे नागपत्तनम और वेदरण्यम के बीच तमिलनाडु तट को पार कर गया। इसके असर से तेज हवाएं और बारिश हो रही है। सरकार ने स्थानीय निकायों को भवन, शैक्षिक संस्थान और अस्पतालों के निर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी देने के अधिकार दे दिए हैं। श्रीलंका की संसद में महिंदा राजपक्ष के नेतृत्व वाली नई सरकार के विरुद्ध नए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। पंकज अडवाणी ने लगातार तीसरा बिलियर्ड्स खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।